उद्विकासीय सिद्धांत में सबसे पहले अगस्त कॉम्त का विचार आता है। अगस्त कॉम्त समाजशास्त्र के तथाकथित जनक का समाजशास्त्रीय योगदान उद्विकास सिद्धांत की पुष्टि करता है। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, पर हम यहाँ उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिन सिद्धांतों से सामाजिक उद्विकास का प्रतिपादन एवं पुष्टि होती है। उदाहरण स्वरूप, उनका विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास तीन चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। यहाँ हम संक्षेप में तीनों अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं: धर्मशास्त्रीय थियोलॉजिकल तात्विक मेटाफिजिकल एवं प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक। पहला, धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक स्तर, थियोलॉजिकल और फिक्सनेस स्टेज। मानव के चिंतन का यह वह स्तर है जिसमें वह प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मानता है। कॉन्त ने इस धार्मिक स्तर के भी तीन उप स्तरों की चर्चा की है। वे हैं, पहला, वस्तु पूजा, फैटिसिज्म। इस स्तर में इंसान ने प्रत्येक वस्तु में जीवन की कल्पना की, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव। दूसरा, बहुदेववाद, पॉलीथेइज्म। इस स्तर में विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनका संबंध विभिन्न प्रकार के संबंध घटनाओं से माना गया। तीसरा, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म। यह धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण है। इस चरण में लोग बहुत देवी देवताओं में विश्वास न कर एक ही ईश्वर में विश्वास करने लगे। दूसरा, तात्विक या अमूर्त स्तर, मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। कॉन्त ने इसे धर्मशास्त्रीय एवं वैज्ञानिक स्तर के बीच की स्थिति माना है। इस अवस्था में मनुष्य की तर्क क्षमता यानी रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ गई। इस स्तर में प्रत्येक घटना के पीछे अमूर्त एवं निराकार शक्ति का हाथ माना गया। इस स्तर में सत्ता का आधार दैवी अधिकार के सिद्धांत होते थे। सामाजिक संगठन के वैधानिक पहलू विकसित होने लगे। राजा की निरंकुश सत्ता की जगह धनिक तंत्र या कुबेर तंत्र की व्यवस्था पलने लगी। तीसरा, प्रत्यक्षवादी स्तर, पॉजिटिविस्टिक स्टेज। समाज एवं मानव के समाज एवं मानव मस्तिष्क के उद्विकास का यह अंतिम चरण है। इस स्तर में हर घटना का विश्लेषण, अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगता है। समाज में बौद्धिक, भौतिक तथा नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। इस स्तर में ही मानवता के धर्म यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी एवं प्रजातंत्र का विकास होता है। वर्तमान मानव समाज इसी स्तर में है। संक्षेप में, अगस्त कॉम्त ने उपर्युक्त तीनों स्तरों के सिद्धांत लॉ ऑफ थ्री स्टेज को सामाजिक जीवन पर लागू कर समाज के उद्विकास की प्रक्रिया को सहज ढंग से समझने का और समझाने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः तीनों स्तरों का नियम सामाजिक परिवर्तन के आरंभिक व्याख्या है, जिसमें विचार यानी आइडिया को एक मुख्य कारक माना गया है। विभिन्न प्रकार के विज्ञानों के विकास की प्रक्रिया को भी उन्होंने उद्विकाशीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। यह विज्ञानों के सोपान क्रम यानी हायरार्की ऑफ साइंस का सिद्धांत भी कह सकते हैं। एल एच मॉर्गन का विचार। अमेरिकी मानवशास्त्री मॉर्गन ने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की चर्चा की है। उन्होंने अपने पुस्तक एंशियंट सोसाइटी 1872 में उद्विकास के तीन मुख्य स्तरों का उल्लेख किया है। वे हैं जंगली स्तर, सेवेजरी, बर्बर स्तर, बैबरिज्म एवं सभ्य स्तर सिविलाइजेशन। प्रथम दो स्तरों को उन्होंने पुनः तीन उप स्तरों में बांटा है। वे हैं प्राचीनतम यानी लोअर, मध्य यानी मिडल एवं उच्च स्तर यानी अपर। इन उप स्तरों के साथ उन्होंने विशेष आर्थिक गतिविधियों, उपकरणों, सामाजिक संगठनों आदि की को भी सम्मिलित किया है। अब यहां बारी बारी से तीनों स्तरों की चर्चा की जाएगी। पहला जंगली स्तर सेवेजरी। यह समाज की सबसे आरंभिक अवस्था थी। मानव अपने कार्य एवं व्यवहार में जंगली था। इस अवस्था के प्रारंभिक स्तर यानी लोअर स्टेज में मनुष्य जंगलों में भटकता था। उसकी संस्कृति काफी सरल एवं अविकसित थी। फल, कंद मूल, कच्चा मांस आदि खाकर वह जीवित रहता था। वह गुफाओं या कभी पेड़ों पर भी अस्थायी रूप से निवास करता था। यौन संबंधों में स्वच्छंदता थी। मध्य स्तर यानी मिडिल स्टेज में मानव ने मछली पकड़ने और आग जलाने की कला सीख ली। अब वे कच्चे मांस को आग में भूनकर खाने लगे। सामूहिक जीवन यानी कलेक्टिव लाइफ की शुरुआत वस्तुतः इसी स्तर में हुई। मानव छोटे छोटे समूहों में रहने लगा। मॉर्गन ऑस्ट्रेलियन एवं पॉलिनीजियन जनजातियों को इस अवस्था का प्रतिनिधि मानते हैं। अंततः जंगली अवस्था के उच्च स्तर का विकास तीर धनुष के आविष्कार से हुआ। इसी स्तर से पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई। यद्यपि यौन संबंध के निश्चित नियम नहीं बने थे, घुमक्कड़े जीवन में कुछ स्थिरता जरूर आ गई थी। दूसरा बर्बर स्तर बार्बरिक स्टेज। समाज के उद्विकास का यह दूसरा महत्वपूर्ण स्तर था। बर्बर अवस्था के प्राचीन स्तर यानी लोअर स्टेज की शुरुआत मॉर्गन ने बर्तनों को बनाने एवं उसके प्रयोग की कला माना है। इस स्तर में संपत्ति की धारणा का विकास हुआ। एक समूह दूसरे समूह पर स्त्रियों, बर्तनों, हथियारों आदि के लिए आक्रमण करते थे। परिवार का स्वरूप थोड़ा विकसित हो गया था, लेकिन यौन संबंध की स्वतंत्रता अभी भी बनी हुई थी। मध्य स्तर यानी मिडिल स्टेज में जानवर पालने एवं पौधे उगाने की कला विकसित हुई। घुमंतू जीवन में कुछ अस्थायीपन आया। व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हुई। आर्थिक लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रथा चली। परिवार के लोगों के बीच यौन संबंध के संदर्भ में कुछ निश्चित नियम विकसित हुए। उच्च स्तर यानी अपर स्टेज की शुरुआत लोहे के बर्तन और औजार बनाने की कला से होती है। समाज में स्त्री पुरुष के भेद को आधार मानते हुए श्रम विभाजन लागू हुआ। इस स्तर में छोटे छोटे गणराज्यों की स्थापना हो चुकी थी। स्त्रियों को भी संपत्ति माना जाता था। इस स्तर को धातु युग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, सभ्य स्तर यानी सिविलाइज्ड स्टेज। उद्विकास के क्रम का यह अंतिम और विकसित स्तर है। सभ्य अवस्था की शुरुआत अक्षरों को लिखने और पढ़ने की कला से मानी जाती है। इससे संस्कृति का हस्तांतरण संभव हुआ। परिवार में यौन संबंध के नियम एवं नियंत्रण निश्चित हुए। वाणिज्य, व्यापार और नगरों के विकास आरंभ हुए। धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक संगठन बहुत ही व्यवस्थित हो गए। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण आर्थिक कार्यकलाप के मुख्य आधार बने। राजनीतिक संगठन का विकास हुआ। राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। कानून का भी विकास व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए होने लगा। आधुनिक काल में विज्ञान के विकास से औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। इसके परिणाम स्वरूप जटिल समाज की रूपरेखा सामने आई। पूंजीवादी व्यवस्था पूर्ण विकसित रूप में सामने आई। समाज में प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों को स्वीकृति मिली। राज्य को एक कल्याणकारी संस्था माना गया। समाज के हरेक क्षेत्र में भौतिकवादी दर्शन यानी मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी की छाप पड़ी। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मॉर्गन ने प्रौद्योगिक विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को सामाजिक उद्विकास का एक मुख्य कारक माना है। इसी तरह उसने अलग से परिवार की उद्विकासीय रूपरेखा की प्रस्तुति भी की है। इसमें कोई शक नहीं है कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर मॉर्गन का महत्वपूर्ण प्रभाव था। कार्ल मार्क्स का विचार। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने भी सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने समाज के विकास को विभिन्न चरणों में दिखाया है। उनके अनुसार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का मुख्य योगदान होता है। कार्ल मार्क्स अपने समय के प्रचलित विचारों में काफी कार्ल मार्क्स अपने समय के प्रचलित विचारों से काफी प्रभावित थे। उसी प्रभाव का प्रतिफल है कि उनकी संघर्ष विचारधारा में उद्विकासीय सिद्धांत के तत्व मौजूद हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स एंड एंगल्स 1960 में स्वामित्व यानी ऑनरशिप के विकास के संबंध में चार सोपानों की चर्चा की है। जनजातीय यानी ट्राइबल, पुरातन एंशियंट, सामंती यानी फ्यूडल एवं पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट। आगे चलकर उन्होंने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एवं प्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉर्मेशन में उत्पादन के तरीकों यानी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के चार स्तरों की चर्चा की। वे इस प्रकार हैं, एसीआई, एसीएस्टिक, पुरातन एंशियंट, सामंती फ्यूडल एवं पूंजीवादी कैपिटलिस्ट। इन दो प्रकार के चरणों में फर्क कोई विशेष नहीं है। इसके सिवा कि प्रारंभिक जनजातीय यानी ट्राइबल स्तर के बाद में उन्होंने एशियाटिक कहना ज्यादा उचित समझा। इस संशोधन के पीछे कुछ विद्वानों द्वारा उनके सिद्धांत की आलोचना थी। आदिम साम्यवाद, प्राइमिटिव कम्युनिज्म। मानव समाज के इतिहास का यह प्रथम चरण था। इस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर समुदाय का पूर्ण नियंत्रण होता था। व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का अभाव था। इसलिए इस समाज में न तो किसी तरह का शोषण था और न ही वर्ग व्यवस्था। यह एक वर्गहीन यानी क्लासलेस समाज था। इसके बाद धीरे धीरे समाज एशियाटिक उत्पादन के साधनों के स्तर की ओर अग्रसर हुआ। दासमूलक समाज, स्लैब सोसाइटी। दासमूलक समाज में मार्क्स के अनुसार प्रथम बार मानव समाज के इतिहास में दास और मालिक जैसे दो वर्गों का उदय हुआ। विकास के इसी स्तर में सामूहिक स्वामित्व यानी कलेक्टिव ओनरशिप के जगह व्यक्तिगत स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप का विकास हुआ। इसी युग से आर्थिक विकास तीव्र हुआ। व्यापार, नगरों का निर्माण, धातुओं का प्रयोग आदि इस स्तर से ही प्रारंभ हुआ। सामंती समाज यानी फ्यूडल सोसाइटी। सामंती समाज का आगमन दास एवं मालिक के बीच परस्पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। इस समाज में भी दो वर्ग थे। इसको प्लीज ऐसे कर दीजिए। वे थे सामंत यानी फ्यूडल लॉर्ड्स और कृषिदास यानी सर्फ्स। सामंत उत्पादन के साधनों के स्वामी थे। कृषिदास सामंतों के अधीन कार्यों में हाथ बटाते थे तथा युद्ध की स्थिति में सामंत के सिपाही के रूप में लड़ते थे। इस समाज में निजी संपत्ति की धारणा और ज्यादा मजबूत हुई। सामंतों एवं कृषिदास के बीच संघर्ष निरंतर चलते रहते थे। पूंजीवादी समाज, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी सामंतों एवं कृषिदासों के बीच पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। इस समाज में भी मुख्य दो वर्ग हैं, पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट और श्रमिक या सर्वहारा, प्रोलेटरेट। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर मुख्य अधिकार पूंजीपतियों का होता है, जबकि उत्पादन कार्य में मेहनत श्रमिकों की होती है। पूंजीपति सदा श्रमिकों का शोषण करते हैं। इससे दोनों वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल की प्रक्रिया चलती रहती है। मार्क्स ने साम्यवादी समाज यानी कम्युनिज्म सोसाइटी को उद्विकास का अंतिम चरण माना है। उनके अनुसार इस समाज में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया का अंत संभव है, क्योंकि विकास के इस चरण में वर्ग विभाजन के साथ साथ राज्य की भी समाप्ति हो जाएगी। विदरिंग अवे ऑफ स्टेट। लेकिन अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों से लगता है कि निकट भविष्य में ऐसा समाज संभव नहीं है। कुछ विद्वानों का विचार है कि मार्क्स को एक उद्विकासीय चिंतक नहीं कहा जाना चाहिए। मार्क्स का विचार बहुत कुछ उद्विकासीय इसलिए लगता है कि उन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की है। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार। हर्बर्ट स्पेंसर, 1914। स्पेंसर ने जीव एवं समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पदार्थ अविनाशी एवं गतिमान होता है। गत्यात्मकता ही उद्विकास के मूल में है। समाज ब्रह्मांड की गत्यात्मकता के कारण ही सदा परिवर्तनशील है। प्रारंभ में समाज बहुत ही सरल था। परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण ही विभेदीकरण भी बढ़ता गया। मुख्यतः उद्विकास में दो प्रक्रियाएं काम करती हैं, एक विखंडन यानी डिवीजन की और दूसरा एकीकरण इंटीग्रेशन की। यूनिट्स के आकार में विस्तार के साथ ही साथ उसकी संरचना में भी वृद्धि होती है। मूलतः स्पेंसर विकास की प्रक्रिया को एकीकरण की ही प्रक्रिया मानते हैं। कहने का मतलब, समाज की व्यापक एकता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समाज के अंग प्रत्यंग की जटिलता एवं कार्य बढ़ते जाते हैं। उद्विकास की प्रक्रिया में समाज के विभिन्न अंग जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके विभिन्न अंगों के बीच श्रम विभाजन और विशेषीकरण यानी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन भी बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए हम परिवार, स्कूल, राज्य आदि समितियों के विशेषीकृत प्रकारों की चर्चा कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के विभिन्न अंगों के बीच श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की प्रक्रिया बढ़ने से उनमें पृथकता बढ़ जाती है, बल्कि उनके बीच अंतर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य एवं अन्य समितियों तथा संस्थाओं के बीच अंतर संबंध एवं अंतर निर्भरता बढ़ी है। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है। इसी प्रक्रिया के दौरान समाज का सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज तीन चरणों से गुजरता है। वे हैं, पहला आदिम यानी प्राइमिटिव, दूसरा जंगली यानी सेवेस, और तीसरा औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि स्पेंसर ने रेखीय उद्विकास की चर्चा की है, लेकिन बाद में उसने बहुरेखीय उद्विकास को भी स्वीकार किया। सामाजिक इकाइयों के बीच का श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण बढ़ने के साथ ही अंतःनिर्भरता भी बढ़ती है। डर्कहाइम के द्वारा प्रतिपादित श्रम विभाजन का सिद्धांत स्पेंसर की उद्विकासी व्याख्या से प्रभावित हुआ मालूम पड़ता है। एमिल डर्कहाइम का विचार। डर्कहाइम 1947। एमिल डर्कहाइम ने भी अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में सामाजिक परिवर्तन को उद्विकासीय परंपरा में स्पष्ट किया है। उनके अनुसार समाज का परिवर्तन यांत्रिक या सहज एकता मैकेनिकल सोलिडरिटी से सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सोलिडरिटी की ओर होता है। यांत्रिक एकता प्राचीन एवं सरल समाजों की विशेषता है। ऐसे समाज में व्यक्तियों की स्थिति यानी स्टेटस, भूमिका यानी रोल, मूल्य यानी वैल्यू, विश्वास यानी बिलीफ, जीवन शैली और नैतिकता यानी मोरालिटी आदि में एकरूपता पाई जाती है। व्यक्तियों पर परंपरा यानी ट्रेडिशन, जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन और धर्म यानी रिलीजन का अत्यधिक प्रभाव होता है। कानून का स्वरूप दमनकारी यानी रिप्रेसिव होता है। अपराध को सामूहिक भावनाओं पर आघात माना जाता है। दूसरी ओर डार्कहाइम ने सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सोलिडरिटी का समाज वैसे समाज को कहा है जो विकसित यानि डेवलप्ड, जटिल यानि कॉम्प्लेक्स, औद्योगिकृत यानि इंडस्ट्रियलाइज्ड और आधुनिक यानि मॉडर्न है। समाज में ऐसे परिवर्तन श्रम विभाजन यानि डिवीजन ऑफ लेबर एवं विशेषीकरण यानि स्पेशलाइजेशन में विस्तार के कारण होता है। इससे व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर आश्रित हो जाता है। कानून का स्वरूप दमनकारी न होकर वह क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित हो जाता है, अर्थात गलत काम करने वाले लोगों को कानूनी तौर पर घाटे की भरपाई करनी होती है। यांत्रिक एकता का आधार सामूहिकता की भावना है, तो सावयवी एकता का आधार व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं भिन्नता है। यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है, जबकि सावयवी एकता समाज में अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। संक्षेप में डार्कहाइम ने सामाजिक उद्विकास का संबंध श्रम विभाजन एवं सामाजिक एकता से बताया है। समाज आरंभिक तौर में यांत्रिक एकता पर निर्भर था और उसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का अभाव था। दमनकारी कानून का बोलबाला था, सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की प्रधानता थी। समय बीतने के साथ समाज में जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। इससे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की प्रक्रिया का विस्तार हुआ। व्यक्तिक भिन्नताएं बढ़ने लगीं, सामूहिकता में ह्रास होने लगा। ऐसे समाज में सावयवी एकता का विस्तार हुआ और सामाजिक संरचना जटिल हो गई। टैलकॉट पार्सन्स का विचार। आधुनिक समाजशास्त्रियों में पार्सन्स 1964-1966 एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने उद्विकास के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है, पर उनकी तुलना अक्षरशः परंपरागत उद्विकास के विचारधारा को मानने वालों से नहीं की जा सकती है। पार्सन्स की गणना एक प्रकार्यवादी सामाजिक उद्विकासवादी यानी फंक्शनल सोशल इवोल्यूशनिस्ट के रूप में की जाती है। कुछ रूप में यदि वे अपने पूर्ववर्ती उद्विकासवादी सामाजिक चिंतनों का समर्थन करते हैं तो कुछ अर्थों में उनसे भिन्न भी हैं। अपने पूर्ववर्ती उद्विकासवादी सामाजिक चिंतकों की तरह पार्सन्स ने यह विचार व्यक्त किया है कि समाज उद्विकास के चलते निम्न विभेदीकरण यानी लो लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन से उच्च विभेदीकरण यानी हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ता है। उनका यह भी मानना है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत बहुत हद तक एक जैविक विकास के सिद्धांत की छाया प्रति है, लेकिन पार्सन्स के अनुसार उद्विकास की यांत्रिक अलग है। पर इस भिन्नता के बावजूद सामाजिक एवं जैविक उद्विकास में समानता भी है। इस समानता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्वों यानी इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स की चर्चा की है, जैसे दृष्टि यानी विजन। पार्सन्स का कहना है कि विभिन्न किस्म के प्राणियों के बीच दृष्टि एक उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्व है। जैसे जैसे जैविक उद्विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों में दृष्टि आती गई। प्रकृति में अपने आप को समायोजित करने के लिए विभिन्न प्राणियों में दृष्टि की नितांत आवश्यकता पड़ी। दूसरे शब्दों में दृष्टि जैविक उद्विकास की जटिलता का एक लक्षण है। यदि विभिन्न किस्म के प्राणियों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करना होता तो संभवतः कि प्रकृति से उन्हें दृष्टि नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार से मानव समाज में भी उद्विकास की प्रक्रिया के साथ बहुत सारे उद्विकासी सार्वभौमिक तत्वों की उत्पत्ति हुई। चूंकि मनुष्यों को संघर्ष में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तथा नए वातावरण से समायोजित करने के लिए बहुत किस्म के अस्त्रों व उपायों की जरूरत पड़ती है, इसलिए उद्विकास की प्रक्रिया में बहुत तरह की क्षमताओं का स्वतः विकास हुआ। पार्सन्स ने बताया है कि संचार यानी कम्युनिकेशन मानव सभ्यता के विकास का दूसरा प्रमुख उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्व है। भाषा संचार का एक प्रमुख साधन है। समाज के उद्विकास के साथ साथ भाषा की भी उत्पत्ति हुई। भाषा की उत्पत्ति के अभाव में लोगों के बीच संचार संभव नहीं था। भाषा ने मानव समाज में ज्ञान विज्ञान और चिंतन को आगे बढ़ाने में मदद किया। यह एक ऐसा प्रमुख उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्व है जिसके अभाव में मानव समाज और उसकी संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां कोई भाषा बोली न जाती हो। नातेदारी यानी किनशिप एवं धर्म यानी रिलीजन भाषा की ही तरह कुछ प्रमुख उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्वों में से हैं। नातेदारी प्रथा एवं धर्म के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। संचार की तरह ही इन दो उद्विकासी सार्वभौमिक तत्वों का विकास स्वाभाविक रूप से समाज के साथ समय के साथ समाज में हुआ है। पार्सन्स ने बताया है कि आधुनिक समाज उद्विकास के चार प्रमुख चरणों से गुजरता है जो इस प्रकार है। पहला निम्न स्तर आदिम स्तर माफ करिए पहला निम्नतर आदिम स्तर लोअर प्राइमेटिव स्टेज, दूसरा उन्नत आदिम समाज एडवांस्ड प्राइमेटिव सोसाइटी, तीसरा मध्यवर्ती समाज इंटरमीडिएट सोसाइटी और चौथा उद्योगीकृत समाज इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। इन सभी स्तरों की यहां संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। डर्कहाइम की तरह पार्सन्स ने कहा है कि प्रारंभिक मानव समाज ऑस्ट्रेलिया की आदिम जाति से मिलता जुलता रहा होगा। वहां के लोगों की जो संस्कृति है उसे पार्सन्स ने मानव की संस्कृति के उद्विकास का पहला चरण माना है। इसे निम्नतर आदिम स्तर के नाम से भी जाना जाता है यानी लोअर प्राइमेटिव स्टेज। विभिन्न किस्म के प्रतीकों के सहारे लोग अपने विचारों धार्मिक विश्वासों अपनी इच्छाओं और मनोवृत्तियों को स्पष्ट किया करते थे। इस स्थिति को पार्सन्स ने संघटक प्रतीकवाद यानी कंस्टिट्यूटिव सिंबोलिज्म कहा है। जैसे जैसे समाज में विभिन्नताएं बढ़ीं लोग उद्विकास के दूसरे चरण में बढ़े जिसे पार्सन्स ने उन्नत आदिम समाज यानी एडवांस प्राइमेटिव सोसाइटी कहा है। इस तरह से समाज के अंदर सामाजिक चरण यानी सामाजिक स्तरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की उत्पत्ति हुई। सामाजिक समानता में भी कमी आई। वर्ग की अवधारणा का जन्म हुआ। खेती और पशुपालन जैसे पेशों का भी जन्म हुआ। धर्म ने अपना एक स्पष्ट रूप लिया। उद्विकास के तीसरे चरण को पार्सन्स ने मध्यवर्ती समाज यानी इंटरमीडिएट सोसाइटी कहकर पुकारा है। इस चरण के दो उपचरण हैं, प्राचीन समाज यानी आर्कियक सोसाइटीज और ऐतिहासिक समाज यानी हिस्टोरिक सोसाइटीज। उद्विकास के इस चरण में धर्म का विकास इतना अधिक हो गया कि यह लोगों के रोजमर्रे के जीवन को प्रभावित करने लगा। भाषा और साहित्य का विकास हुआ, समाज में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, नेतृत्व भी स्पष्ट रूप से विकसित हो गया। लोगों का आम जीवन राजनीतिक एवं प्रशासनिक पेंचीदगियों से प्रभावित होने लगा। पार्सन्स के अनुसार प्राचीन मिस्र, चीन, रोम की सभ्यता मध्यवर्ती समाज का अच्छा उदाहरण है। उद्विकास के इस चरण में बहुत सारे उद्विकासीय प्रत्यय या सार्वभौमिक तत्व उत्पन्न हुए, जैसे विशिष्ट किस्म के राजनीतिक वैधता का विशेषीकृत रूप, नौकरशाही संगठन यानी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मुद्रा विनिमय मॉनेटरी एक्सचेंज एवं विशिष्ट किस्म की कानूनी व्यवस्था स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉ इत्यादि। पार्सन्स ने बताया है कि इस तरह के उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्व ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उद्योगीकृत समाज इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। उद्योगीकृत समाज पार्सन्स के उद्विकासीय सिद्धांत का अंतिम चरण है। उन्होंने बताया है कि उद्योगीकृत समाज में सबसे अधिक विभेदीकरण पाया जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार के विशेषीकरण का विकास होता है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में अस्पष्ट अलगाव दिखाई पड़ता है, पर इसके साथ ही विभिन्न किस्म की व्यवस्थाओं के बीच आपसी निर्भरता पाई जाती है। राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिल्कुल अस्पष्ट हो जाती हैं। परंपरागत विश्वासों की जगह वैज्ञानिक चिंतन एवं आधुनिकता की विभिन्न विशेषताएं जगह ले लेती हैं। धार्मिक विश्वासों की जगह पर धर्मनिरपेक्ष मूल्य चला आता है। सामुदायिक भावना की जगह पर व्यक्तिवाद चला आता है। अध्यात्मवाद की जगह पर भौतिकवादी मूल्य समाज में लोकप्रिय हो जाते हैं। पार्सन्स के उपयुक्त विचारों से बहुत लोग सहमत नहीं हैं। आलोचकों का कहना है कि मानव समाज का उद्विकास जैविक उद्विकास से मेल खाने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैविक उद्विकास में आनुवांशिक हस्तांतरण की विशेष महत्ता है। उस ढंग से समाज में वंशानुगत हस्तांतरण यानी हेरिडिटी ट्रांसफर नहीं होता है। उद्विकासी सिद्धांत का एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल व्यू। उद्विकासी सिद्धांत के प्रवर्तकों ने समाज के अनेक आधारभूत तत्वों की अनदेखी की है। फलस्वरूप अधिकांश आधुनिक समाजशास्त्री उद्विकासी विश्लेषण को प्रासंगिक नहीं मानते हैं। पहली बात तो यह है कि हर एक समाज पर विकास का एक ही नियम लागू नहीं हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हर एक समाज की भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। फलस्वरूप उनका उद्विकासीय स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। दुनिया के विभिन्न जनजातीय समुदाय के अध्ययन से पता चला है कि उनके विकास के स्तर भिन्न भिन्न रहे हैं। मकीवर एवं पेज का कहना है कि समाज की उत्पत्ति एक सावयव यानी ऑर्गेनिज्म की भांति नहीं होती है। सामाजिक उद्विकास में मानव प्रयत्न यानी ह्यूमन इफर्ट की भूमिका अहम होती है, जबकि जैविक उद्विकास में प्राकृतिक शक्तियां ही महत्वपूर्ण होती हैं। गिंजवर का विचार है कि समाज सरलता से जटिलता की ओर जाता है, एक विवादास्पद विषय है। यह कोई जरूरी नहीं है कि समाज एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचने पर जटिल ही हो जाएगा। व्यवहार में तो यह देखने को मिलता है कि प्रौद्योगिक उपलब्धियां मानव को जटिलता से सरलता की ओर ले जाती हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जैविक उद्विकास का सिद्धांत तत्कालीन सामाजिक वैज्ञानिकों को इतना प्रभावित किया कि उद्विकासी विचारकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाने लगा। इस सिद्धांत के समर्थक यह मानते थे कि गोरे लोग यानी व्हाइट सभी प्रजाति वंश स्रोतों यानी रेसियल स्टॉक में सबसे ज्यादा विकसित और बेहतर हैं। इससे पाश्चात्य देशों में प्रजातिवाद जैसे संकीर्ण धारणा को काफी बढ़ावा मिला। 20वीं सदी के दूसरे दशक आते आते सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक डार्विनवाद बहुत ही अलोकप्रिय विचारधारा के रूप में मृत प्राय सा हो गया। फलस्वरूप सामाजिक उद्विकासवादी यानी सोशल इवोल्यूशनिज्म विचारधारा की महत्ता में काफी कमी आ गई। उद्विकासीय सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें विभिन्न चरणों का आधार विभिन्न समाजों में उपलब्ध आंकड़े रहे हैं। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादकों ने विभिन्न समाजों में फैले हुए तथ्यों को एक साथ जोड़कर अपने सिद्धांत का निर्माण किया है। जैसे मॉर्गन ने जंगली स्तर सैविजरी के बारे में तथ्य किसी समाज से बर्बर स्तर यानी बाबरिज्म की बात दूसरे समाज से तथा सभ्य स्तर यानी सिविलाइजेशन का चर्चा किसी और समाज के आधार पर किया है। इसलिए रॉबर्ट निसनबेट ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया है कि उद्विकासीय सिद्धांत फिल्मी चलचित्र जैसा है जिसमें बहुत सारी घटनाओं के क्रम को एक कड़ी में जोड़ दिया गया है। सोरोकिन ने कहा है कि उद्विकास के जितने भी सिद्धांत हैं वे सभी पारलौकिक विचार या सृष्टि कथा जैसे सिद्धांत हैं, वे सभी अवैज्ञानिक हैं। इन सिद्धांतों का आधार कल्पित एवं स्वानुभूति मूलक विचार मात्र है। इन सभी कमियों के बावजूद संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के क्रमिक अध्ययनों में इस सिद्धांत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय चिंतन के क्षेत्र में आज भी इसकी प्रासंगिकता कुछ न कुछ बनी हुई है। सामाजिक संरचना प्रकार एवं आधुनिकीकरण जैसे अवधारणाओं पर भी उद्विकासीय चिंतन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। चक्रीय सिद्धांत साइक्लिकल थ्योरी। ऐसा लगता है कि चक्रीय सिद्धांत के समर्थक प्रकृति में सदा से होने वाले चक्रीय परिवर्तन से काफी प्रभावित रहे हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी चक्रीय होती है यानी साइक्लिकल होती है। दुनिया के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय व्याख्या का वर्णन मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में विभिन्न युगों की चर्चा एक चक्रीय ढंग से की गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग की व्याख्या परिवर्तन की एक चक्रीय व्याख्या है। प्राचीन यूनान में भी ऐसी मान्यता रही है कि सामाजिक परिवर्तन चक्रीय गति से होती है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी इस बात की चर्चा की है। इससे ऐसा लगता है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की तुलना में सबसे पुराना है। 19वीं एवं 20वीं सदी के विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की है कि समाज एवं संस्कृति एक सर्पिल गति से घूमती रहती है। वीको, पारेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन एवं टाइनबी ने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया है कि समाज में परिवर्तन का क्रम सदा चक्रीय होता है। उनके अनुसार हर सभ्यता का जन्म होता है, वह विकसित होती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और फिर वहां से पतोन्मुख होती हुई अंततः समाप्त हो जाती है। परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का मूल आधार यह है कि सामाजिक परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त हो जाता है। यह स्थिति चक्र की तरह पूरी होने के बाद भी बार बार दोहराई जाती है। इटालियन दार्शनिक वीको ने मानव इतिहास का गहन अध्ययन किया। अध्ययनोपरांत उन्होंने बताया है कि समाज एक चक्रीय दिशा में उद्विकास होता है। चूंकि उनका सामाजिक चिंतन अगस्त कॉम्ट से बहुत पहले का है, इसलिए ई एस बोगार्डस ने उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहकर पुकारा है। वीको ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन सर्पिल प्रक्रिया यानी स्पिरल प्रोसेस में होती है। उनके इस विचार में सामाजिक उद्विकास और चक्रीय सिद्धांत दोनों की बातें एक साथ मिलती हैं। उद्विकास के संदर्भ में उनका यह कहना है कि समाज सहयोग के निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर की ओर बढ़ता है और फिर सर्पिल गति से वहीं वापस पहुंच जाता है। वी पारेटो का विचार। इटालियन समाजशास्त्री पारेटो को उद्विकास के सिद्धांत में कतई विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि ऐतिहासिक तथ्यों से कभी भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि समाज का विकास कई चरणों में होता है। उद्विकास के सिद्धांत से असंतुष्ट होकर उन्होंने सामाजिक गत्यात्मकता के कई सिद्धांत दिए हैं। विशिष्ट या संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण उन्हीं सिद्धांतों में से एक है। विशिष्ट वर्ग का परिभ्रमण के सिद्धांत को स्पष्ट करने के पूर्व हम इलिट शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना चाहेंगे। पारेटो ने इलिट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, बृहत्तर एवं संकीर्ण अर्थ में। बृहत्तर अर्थ में विशिष्ट वर्ग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में समाज में सबसे आगे है उसे पारेटो ने विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में रखा है। जैसे कुशल या विख्यात लेखक, कलाकार, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, व्यापारी, अव्वल दर्जे का चोर या ठग इत्यादि। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए टीमा सेफ ने कहा है कि इलाइट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। संकीर्ण अर्थ में विशिष्ट वर्ग से पारेटो का तात्पर्य मात्र शासी या शासक विशिष्ट वर्ग से है, जो इलिट का एक प्रकार है। सामान्यतः संभ्रांत वर्ग को उन्होंने दो भागों में बांटा है, शासी यानी शासक संभ्रांत वर्ग यानी गवर्निंग एलाइट एवं गैर शासी यानी शासक संभ्रांत वर्ग नॉन गवर्निंग एलाइट्स। शासी संभ्रांत वर्ग वे लोग आते हैं जो सरकार या प्रशासन में हैं। प्रशासन के बाहर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता या लोकप्रियता प्राप्त विशिष्ट लोग गैर शासी संभ्रांत वर्ग यानी नॉन गवर्निंग एलाइट्स की श्रेणी में आते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासी संभ्रांत वर्ग का अवधारणा परेटो के पहले उनके समकालीन विद्वान मुस्का ने दिया था। विशिष्ट वर्ग की परिभ्रमण के विश्लेषण के संदर्भ में काफी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। बहुत सारे भारतीय लेखकों ने अपनी पुस्तकों में यह लिखा है कि परिभ्रमण की प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग एवं गैर संभ्रांत वर्ग के बीच होती है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा रहा है कि समाज में परिभ्रमण संभ्रांत वर्ग एवं गैर संभ्रांत वर्ग के बीच भी होता है, लेकिन परेटो ने अपने परिभ्रमण के सिद्धांत का विश्लेषण शासी संभ्रांत वर्ग यानी गवर्निंग एलाइट्स एवं गैर शासी संभ्रांत वर्ग के संदर्भ में दिया था। इसे किनलॉक ने भी स्वीकार करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि परिभ्रमण हमेशा लायन एलाइट्स एवं फॉक्स एलाइट्स के बीच होता है। संभ्रांत वर्ग की परिभ्रमण के सिद्धांत को स्पष्ट करने से पहले हमें उनके द्वारा प्रतिपादित शेर यानी लायन और लोमड़ी यानी फॉक्स एवं प्रेरक यानी रेसिड्यूस जैसे अवधारणाओं को समझना होगा। 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे शेर यानी लायन एवं लोमड़ी यानी फॉक्स। उनके अनुसार शेर में द्वितीयक श्रेणी के प्रेरक यानी समूह के अस्थायित्व के विशिष्ट चालक रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स की प्रधानता होती है। जिन लोगों में इस प्रेरक की प्रधानता होती है वे अनुदार एवं रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं। ऐसे लोगों में परिवार, जाति, कबीले, नगर एवं राष्ट्र के प्रति बहुत वफादारी की भावना पाई जाती है। चूंकि वे लोग बहुत देशभक्त एवं रूढ़िवादी होते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वे लोग काफी कठोर भी हो जाते हैं। वे तलवार की नोक पर शासन करने का दम रखते हैं। लोमड़ियों यानी फॉक्स के बारे में उन्होंने बताया है कि उसमें प्रथम श्रेणी के प्रेरकों यानी संयोजन के विशिष्ट चालक रेसिड्यूस ऑफ कॉम्बिनेशन की प्रधानता होती है। जिन लोगों में वैसे प्रेरकों की प्रधानता होती है वे लोग योजना बनाने, जोड़ तोड़ करने में काफी निपुण होते हैं। वे लोग समाज में परिवर्तन, परीक्षण एवं नवीन प्रक्रिया शुरू करने का गुण रखते हैं। वैसे लोग कभी अनुदार एवं वफादार नहीं हो सकते हैं। वे लोग समझा बुझाकर या झूठे वादे तथा धोखाधड़ी के सहारे शासन करने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग काफी घुसखोर भी होते हैं। भारत के बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। परेटो ने बताया है कि शासक विशिष्ट वर्ग में दोनों श्रेणियों के गुणों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक संभव नहीं हो पाता है। बहुत दिनों तक शासन में रहने से इन गुणों में कमी आ जाती है। वे इतने क्रूर एवं जुझारू नहीं रह पाते हैं। आलसीपन एवं अय्याशी प्रवृत्ति के कारण उनके शासन की क्षमता में कमी आ जाती है। वे लोग शासी संभ्रांत वर्ग से खिसक कर गैर शासी संभ्रांत वर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। पारेटो का मानना है कि लोगों का शासी संभ्रांत वर्ग से गैर शासी संभ्रांत और गैर शासी संभ्रांत वर्ग से शासी संभ्रांत वर्ग में जाना अवश्यंभावी प्रक्रिया है। परिभ्रमण की गति और मात्रा हर समाज में अलग अलग समय में अलग अलग पाई जाती है, पर परिभ्रमण एक ऐतिहासिक यथार्थ है। इसीलिए तो परेटो ने अपनी पुस्तक में कहा है कि हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। परेटो का कहना है कि शासक विशिष्ट वर्गों का परिभ्रमण एक अनिवार्य और निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि शासक संभ्रांत वर्ग में कभी प्रथम श्रेणी के प्रेरक कारकों की प्रधानता होती है तो कभी द्वितीय श्रेणी के प्रेरक कारकों की प्रधानता होती है। इन्हीं दो प्रेरकों की प्रधानता में बदलाव के कारण समाज में परिवर्तन चलता रहता है। इसीलिए ओसोपीए का कहना है कि अल्टरनेशन फ्लक्चुएशन एंड सक्सेशन ऑफ एलाइट वॉज द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, आईएस कॉन 1989। संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का विश्लेषण एक बृहत स्तर पर भी किया जा सकता है। परेटो की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम समाज को दो वर्गों में बांट सकते हैं, संभ्रांत वर्ग यानी एलिट्स एवं गैर संभ्रांत वर्ग यानी नन एलिट्स। समाज में परिभ्रमण उच्च एवं निम्न स्तरन के बीच भी चलता रहता है। जो समाज के नीचे तबके में रहकर जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं वे संभ्रांत वर्ग से जा मिलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो संभ्रांत वर्ग के हैं वे अपनी क्षमता की कमी के कारण संभ्रांत वर्ग से पदच्युत होकर नीचे खिसक जाने को बाध्य हो जाते हैं। कभी कभी संभ्रांत वर्ग के लोग समय के साथ मिट जाते हैं, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी गैर विशिष्ट लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। इस तरह से गैर संभ्रांत वर्ग से संभ्रांत वर्ग एवं संभ्रांत वर्ग से गैर संभ्रांत वर्ग में जाने की प्रक्रिया समाज में चलती रहती है। मार्टिन डेल ने स्पष्ट लिखा है, देयर इज ऑल्सो ए सर्कुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अपर टू लोअर क्लासेस एंड वाइसे वर्सा। ऐसा होना इसलिए स्वाभाविक है कि समाज के निचले हिस्से के लोगों में सिर और लोमड़ी के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रेरक तत्व थोड़ा बहुत निम्न वर्ग के लोगों के बीच भी पाए जाते हैं। यह एक जन्मजात गुण है जो सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। इसी में फेरबदल होने से समाज में दो वर्गों के बीच परिभ्रमण की प्रक्रिया चलती रहती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिभ्रमण की प्रक्रिया सहज नहीं है। संभ्रांत वर्ग के लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं। इस विरोध में गैर संभ्रांत वर्ग के को कभी जान भी गंवानी पड़ती है तो कभी जेल भी जाना पड़ता है, और कभी गैर संभ्रांत वर्ग के प्रमुख नेताओं को संभ्रांत वर्ग में शरण देकर उनके शेष लोगों को रौंद दिया जाता है। चूंकि परेटो संभ्रांत वर्ग के हितों के समर्थन और गैर संभ्रांत वर्गों के विरोधी थे, इसलिए इन्हें बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स और बुर्जुआजी कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार मार्क्स सर्वहारा के कट्टर समर्थक थे, उसी तरह परेटो बुर्जुआ के समर्थक थे। वे प्रजातंत्र के विरोधी और तानाशाही के घोर समर्थक थे। परेटो ने अपने चक्रीय सिद्धांत के सिलसिले में भविष्यवाणी की है कि जहां कहीं भी संभ्रांत लोगों का शासन है या जहां कहीं भी संसदीय प्रजातंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अर्थात जहाँ के नेताओं में प्रथम श्रेणी के कारकों की प्रधानता है, उसका पतन होना निश्चित है। उसकी जगह पर निम्न वर्ग के अभद्र, शक्तिशाली एवं सामरिक संभ्रांत वर्ग नए किस्म के शेर यानी लायन इलाइट्स के शासन की स्थापना होगी। चूंकि पहले ऐसा हुआ है, इसलिए भविष्य में इसे दोहराए जाने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र में बाबा साहेब अंबेडकर, हरियाणा में देवीलाल, बिहार में जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती आदि जैसे लोगों का भारतीय राजनीति में उभरना पारेटो के इस सिद्धांत को काफ़ी हद तक पुष्टि देता है।